आप हैं SBS हिंदी के साथ।
भारत के गांव कैसे हैं, ये बात सबसे कम हम विदेशों में बसे भारतीय ही जानते हैं। जिन जिन संपर्कों से हम भारत से जुड़े हैं, वहां वहां गांवों की मौजूदगी शायद सबसे कम हो गई है। मीडिया, साहित्य, सिनेमा, कला, संगीत, इन सब में गांव है ही नहीं, और यदि कहीं थोड़ा बहुत है भी तो जाहिर वजहों से सीमा पार नहीं आ पाता। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि भारत के गांव अब कैसे हो गए हैं? इस सवाल का जवाब देने की एक सशक्त कोशिश अभिषेक श्रीवास्तव ने की है। लेखक अभिषेक श्रीवास्तव की किताब देश गांव भारत के गांवों की कहानी कहती है। इस किताब में वे कहानियां हैं जो अभिषेक ने कई साल गांवों में घूम घूम कर जमा की हैं। इन कहानियों को सुनने और गांवों को जानने के लिए हम अभिषेक श्रीवास्तव के पास पहुंचे हैं। अभिषेक जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है। आपने गांवों की कहानियां सुनाने का क्या सोचा, क्योंकि गांवों की तो बात अब कम से कम लोकप्रिय मीडिया है उसमें नहीं हो रही है, ऐसे में गांव पर किताब लिखने की बात कहां से आई?
नहीं, देखिए ऐसा है कि लंबे समय से मैं ये सोच रहा था कि हम लोग जो मीडिया में नौकरी करते हैं, खासकर भारत में जो न्यूज रूम्स की स्थिति है, वहां पर रिपोर्टिंग का कंटेंट कम होता जा रहा है लगातार, और खासकर जो TRP ड्रिवन जो पूरा मामला है उसमें गांवों की ओर मीडिया का ध्यान नहीं जाता है जब तक कि कोई बड़ी घटना नहीं होती है, और अखबारों में भी जो है वो एग्रीकल्चर की बीट बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तो मैंने इंडिपेंडेंटली ही करीब 2007-08 के आसपास बाहर निकलना शुरू किया और अलग अलग घटनाओं के बहाने गांवों में विजिट करना चालू किया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़, और कहीं कोई स्ट्रगल हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, किसानों में सुसाइड हो रहे हैं, इस तरह के मामलों में मैंने जाना शुरू किया और वहां पे मैं रहना शुरू किया। तो मुझे समझ में आया कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कई परतें हैं गांवों की सच्चाई की, और उन्हें एक कहानी के माध्यम से खोलना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैंने सिलसिलेवार रिपोर्टें की, कई जगह छपी, कई नहीं छपी। तो ये जो बुक है जो आई है अभी देश गांव, वो इस तरह की सारी लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टों का संकलन है, और ये करीब पिछले 12-13 साल के किए हुए काम का एक तरह से पूरा कलेक्शन है।
तो किस तरह की रिपोर्टें हैं इसमें?
हाँ देखिए, इसमें असल में क्या है ना कि जो जिस तरह से मैं समझता हूँ अभी फिलहाल भारत की स्थिति को, यहाँ पर जो प्राइमरी जो कंट्रडिक्शन है, जो मूल जो अंतर विरोध है गांवों और शहरों का, वो लोकल बनाम ग्लोबल की लड़ाई है। तो लोकल ग्लोबल की लड़ाई को कुछ इस तरह से आप समझिए कि जब जैसे ही मार्केट इकोनॉमी यहाँ आई 92-90 के बाद भारत में, तो शहरों में एक बड़ा मिडिल क्लास खड़ा हुआ, और जैसे ही मिडिल क्लास का मार्केट सैचुरेट हुआ तो कंपनियां गांवों की ओर बढ़ी, छोटे शहरों की ओर बढ़ी। उस प्रोसेस में हुआ ये कि एक तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड 70% जो पूरी आबादी है उसको कंज्यूमर बनाने की एक कोशिश इधर से हुई, और दूसरी ओर से गांवों में, कस्बों में एस्पिरेशनल वैल्यूज काफी बढ़ी, मतलब एक बड़े पैमाने पर पलायन बढ़ा, डिस्ट्रेस बढ़ा वहां पर। तो जो कंट्रडिक्शन पैदा हुए ना गांव और शहर के बीच में, उसने कई किस्म के कंफ्लिक्ट को जन्म दिया। ये कंफ्लिक्ट जो है तीन लेवल पे है। पहला कंफ्लिक्ट तो जमीन का है, पूरे देश में खेती की जमीन को किस तरीके से यूज चेंज करके उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरे कामों के लिए लाया जा रहा है, एक वो लड़ाई है। दूसरी लड़ाई जंगल की है, इनफैक्ट वो भी जमीन का ही मामला है। तो वहां पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और इस तरह के तमाम जो संरक्षण वाले कानून बने थे, कैसे उनका वायलेशन हुआ। और तीसरी लड़ाई पानी की है। तो ये जल, जंगल, जमीन जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई ना कोई जल, जंगल, जमीन की लूट का मामला है। और मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 10 साल पहले एक रिसर्चर ने काउंट किया था कि पूरे देश में ऐसी लड़ाइयां कितनी चल रही हैं। 4400 के आसपास ऐसे छोटे से लेकर बड़े संघर्षों को उसने काउंट किया। तो आप सोचिए कि 28-30 राज्यों में 4400 संघर्ष अगर जल, जंगल, जमीन के चल रहे हैं तो उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरी सारी कहानियां दरअसल ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है बयान करती हैं।
आप कह रहे हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बावजूद ये कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले कम से कम दो दशक से लगातार इग्नोर हो रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजह लगी आपको गांव में जाके कि ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए, एक तो इग्नोर होने की बेसिक वजह ये है कि जो भारत की जो पत्रकारिता है वो 90 के बाद बहुत तेजी से बदली है। टीवी ने जो है वो महानगरों में जो डब्बे लगे हुए हैं
टीआरपी
नापने वाले, तो उनके हिसाब से मिडिल क्लास को केटर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी बनी कि 2005-6 के बाद पिछले 10 साल में अखबार जो है वो टीवी से अपनी फीड लेने लगे। मतलब ये ट्रेंड पहले नहीं था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अखबारों के न्यूज रूम में जो टीवी के स्क्रीन लगे रहते हैं वहां ब्रेकिंग देख के खबरें बनाई जाती हैं। और पिछले 3-4 साल में जब से ये ट्विटर और फेसबुक आया तो बिल्कुल सिनेरियो बदल गया। मतलब अखबार और टीवी सबके दफ्तरों में एक सोशल मीडिया का बाकायदे सेक्शन होने लगा, और सोशल मीडिया पे तो मतलब वही लोग हैं जो कि शहरों में रहते हैं और अपवर्डली मोबाइल क्लास है, तो वो लोग जैसी ओपिनियन और जैसी चीजें प्रेजेंट करते हैं वो आने लगा। तो मतलब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि पिछले 25 साल में चीजें फिल्टर होती गई और गांव छूटते गए। गांव ही छोड़िए बल्कि शहर में भी, मैं दिल्ली में भी देखूं तो जो शहरी लैंडस्केप है वो दिल्ली के भीतर 60-70 गांव हैं। अब उन 60-70 गांवों की भी रिपोर्टिंग दिल्ली में नहीं होती है, दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर किसी गांव की भी रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो मतलब एकदम फिल्टरिंग होती गई और धीरे 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 क्या हुआ कि किसी भी तरह के डेवलपमेंट के क्राइसिस से जुड़ी हुई खबर जो है उसको जगह मिलना बंद हो गई, अनटिल एंड अनलेस की कोई बहुत बड़ा कांड न हो जाए। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले साउथ में स्टरलाइट के खिलाफ जो गोली चली थी और स्नाइपर की एक फोटो वायरल हुई थी, कुछ वैसी खबरें, या किसी प्लांट में आग लग जाए तो शहर से कोई संवाददाता चला जाता है और 2 दिन के लिए रिपोर्ट करके चला आता है, या कोई बच्चा बोरवेल में गिर जाता है। आप देखिए, मतलब बहुत सिंपल बात है, आज से करीब 15 साल हो गया मेरे ख्याल से वो प्रिंस वाली एक घटना हुई थी टीवी में, एक बच्चा बोरवेल में गिरा था, और वो बोरवेल वाली घटना कई बार दोहराई गई, कई बार अभी हाल में एक बच्चा गिरा था साउथ में बोरवेल में। तो जब भी बच्चा बोरवेल में गिरता है तो टीवी या अखबार उसको चलाते हैं 2-2, 3-3 दिन जब तक कि बच्चा रेस्क्यू ना हो जाए, लेकिन किसी ने भी ये पता करने की जहमत नहीं उठाई कि ये जो बोरवेल वाली संस्कृति गांवों में गई है इसने पानी के टेबल को, वाटर टेबल को कितना दोहन किया है। मैंने देखा मराठवाड़ा में कि वो 300 फीट नीचे सीधे खड़े मारते हैं, फिर 250 फीट आड़े मारते हैं, फिर 200 फीट ऊपर मारते हैं, मतलब कैसे भी पानी मिल जाए। तो होता क्या है कि जमीन के भीतर वो एक बड़े हिस्से का सुराख कर देते हैं, कोई इमारत आप खड़ा करेंगे वो सीधी ढह जाएगी। तो ये बोरवेल की संस्कृति कैसे गाँव में पहुंची, उसका पूरा बिजनेस क्या है, उस पर किसी ने लंबी रिपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या है ना कि छोटे छोटे इवेंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं, दरअसल पिछले 20 साल से हम इवेंट्स के चेन को, उसके कॉज को पकड़ के कहानियां नहीं लिख पा रहे हैं, और इसकी वजह बहुत क्लियर है कि उसमें न्यूज रूम्स का, संपादकों का इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लोगों का भी इंटरेस्ट वैसे ही बना है, लोग भी वैसे चीजें पढ़ना नहीं चाहते हैं।
तो ये समझते हुए क्या आपको डर नहीं लगा कि मेरी किताब कोई नहीं पढ़ेगा?
नहीं, डरना क्या, देखिए हमारा काम, मतलब हम जानते हैं कि हमारा काम लिखना है, तो अगर हम पहले ये मतलब सोचने लगे कि हमें पढ़ेगा कौन, तब तो फिर तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाए, फिर तो हम वही लिखें जो कि पढ़ा जा रहा है। तो ये तो सबकी प्रायोरिटी सबको तय करनी होगी कि उसे लिखना क्या है, और उस लिखने को पढ़ने वाला एक कैचमेंट एरिया तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मतलब इतना बड़ा देश है, इस देश में 125 अरब आबादी में 5,000 लोग तो होंगे ही एटलीस्ट जो कि गंभीर चीजें चाहते होंगे। एक बार यहाँ जोसेफ स्टिग्लिज जो अर्थशास्त्री हैं वो दिल्ली आए थे, तो उन्होंने अपने लेक्चर में बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे लगता है 2004 या 2005 की बात है। उन्होंने कहा था कि देर इज ए मार्केट इन एवरी स्पेस एंड देर इज ए स्पेस इन एवरी मार्केट। तो हर बाजार में जगह है आपके काम करने के लिए, और मतलब किसी भी जगह में आप बाजार खोज सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल और आता है ये बात करते हुए कि गांव शहरों के बारे में क्या सोच रहे हैं? शहर तो पता नहीं सोच रहे हैं कि नहीं गांव के बारे में, लेकिन गांव क्या सोच रहे हैं शहरों के बारे में?
मतलब जनरलाइज तो मैं नहीं कर सकता, थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये अलग अलग इलाकों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर आपको हिंदी पट्टी की बात बताऊं, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के गांवों की, तो वहां के गांव शहरों की ओर देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे अभी भी एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आया है कि शहर में जाने पर किस तरह की दिक्कतें आती हैं। अब जैसे देखिए, मतलब एक इसका मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देना चाहूँ, समय हो आपके पास।
जी जी जी।
यूपी बिहार जो कि देश को चलाता है एक तरह से पॉलिटिकली, ये दोनों राज्य लंबे समय से मतलब माइग्रेटरी राज्य रहे हैं। मतलब काला पानी से लेके त्रिनिदाद टोबैगो से लेके मॉरिशस से लेके जाने कहाँ कहाँ लोग गए हैं अंग्रेजों के जमाने में। तो वो एक माइग्रेशन वाला एक मानसिकता जो है ना, वो मानसिकता बहुत पहले से इन राज्यों के लोगों में है। जब कलकत्ता राजधानी थी तो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कलकत्ता जाते थे, फिर दिल्ली आने लगे, बंबई जाने लगे, अब नोएडा आते हैं, गुड़गांव आते हैं, लुधियाना जाते हैं। तो मतलब दे डोंट सी माइग्रेशन एज समथिंग निगेटिव। वो मतलब जैसे कोई यहाँ से घर जाता है, अपने गाँव जाता है दिल्ली से, तो लोग पहला सवाल पूछते हैं कि ओ कब वापस लौटना है। मतलब वो ये नहीं पूछते हैं कि कितने दिन रहना है, है ना, या वो ये बताने में गर्व करते हैं कि हमारा लड़का तो जो है लुधियाना में काम करता है, नोएडा में काम करता है, चंडीगढ़ में काम करता है। उनको इस बात का एहसास नहीं है कि आपके यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार नहीं है, और आप लड़का आपका पढ़ा लिखा है तो लौट के आए और कुछ यहाँ पे करे, है ना। तो ये हिंदी पट्टी की ये मानसिकता है। मैं इसके उलट अगर उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा की तरफ जाऊं, उधर का मामला दूसरा है। वहां पे वो इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि कोई लड़का बाहर से पढ़ के लिख के नौकरी करके लौट के आया है और हमारे यहाँ लोकली कोई वायबल बिजनेस लगा रहा है और चार लोगों को रोजगार दे रहा है। उन्हें इसमें गर्व महसूस होता है। मतलब उनके यहाँ पलायन वाली हिस्टोरिकल मानसिकता नहीं रही है ना, तो वो हिस्टोरिकल मानसिकता नहीं होने के कारण लड़का बाहर पढ़ने जाता है तो उन्हें बुरा लगता है, वो एक मजबूरी में भेजते हैं अगर अवसर न हो तो। तो मुझे लगता है कि गांव मतलब सारे गांव एक तरीके से शहर को नहीं देख रहे हैं। किन गांवों का क्या हिस्ट्री रहा है, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या प्रोसेस रहा है, उससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि शहर के प्रति पर्सपेक्टिव क्या है लोगों का।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस किताब के लिए और उम्मीद है गांव की और कहानियां आपसे सुनने को मिलेंगी।
शुक्रिया, शुक्रिया जी।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।